मैं तो सवाल ही खत्म हो गया यार.
क्योंकि बहुत सारे फ्लॉज ढूंढते हैं अपन, बहुत सारे एग्जांपल्स ढूंढते हैं कि मैंने ये नुकसान कर दिया, इसका वजह से ये हुआ. यू आर वेरी सिस्टमैटिक. तो सिस्टमैटिक बंदा इन अ सेंस बोरिंग होता है.
हाँ, क्योंकि एक्चुअल काम बहुत बोरिंग है ये. हाँ, देखा जाए तो,
क्योंकि आप एक ही चीज़ कर रहे हो, बार बार अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने की कोशिश नहीं करते, या कुछ नया के यार मैं 2 का 2.5 या 2.25 कर लूँ.
नहीं, तब तक तो नहीं करता.
वो गलत क्यों है? वो तो गलत नहीं है.
नहीं, जैसे
लालच की तरफ से नहीं कह रहा.
हाँ, गलत नहीं है, लेकिन क्या, मैं एज ए कम्फर्टेबल की बात कर रहा हूँ. मैं कम्फर्ट हूँ इसमें. दिल की बात करो कि आप कहाँ पे रुकना चाहते हो. okay. आप मतलब सेटिस्फाइड किस में हो? मैं एज ए 2% या 2.5% में मैं सेटिस्फाइड हूँ. hmm. क्या अभी जैसे कि मैं अभी की मैं बात करूँ, तो मैं एज 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलता हूँ. 1% एज ए स्टॉप लॉस एंड 3% इज अ टारगेट. लेकिन मेरे जो है स्टॉप लॉस भी लगेंगे. hmm. तो ऑन एन एवरेज वो 2 या 3% में आएंगे मंथ का.
फेयर फेयर. दिन में या महीने में कितने ट्रेड्स हो जाते हैं आपके?
4 ही ट्रेड, मतलब टोटल गिन के होंगे 12 ट्रेड टोटल. कि 3
पिरामिडिंग है. कैसे बढ़ते हैं? अच्छा, 3
एवरी वीक.
तो 4 × 3.
हाँ, बस.
मेजरली निफ्टी में करते हो?
मेजरली निफ्टी में करता हूँ. बैंक निफ्टी में कभी कभी.
क्यों?
अब इस तक मैं किया नहीं हूँ, बहुत कम किया हूँ.
वाई?
बैंक निफ्टी मेरे को एज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल लगता है उसको. मतलब एज ए वाइल्ड एनिमल लगता है. अब पहले से एक डर भी है. पहले के जो ट्रेडर्स थे वो थोड़ा सा डर भी बैठा दिया है. शायद मैं प्रैक्टिस करूँ तो शायद इसमें भी हो जाए. अभी के टाइम में बात करूँ तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकता हूँ एज ए. लेकिन मेरे को एज ए टेस्ट के लिए टाइम चाहिए. 1 या 2 महीना उसको टेस्टिंग के लिए मुझे टाइम चाहिए, तब मैं जाके ट्रेड कर सकता हूँ किसी और इंस्ट्रूमेंट में या किसी और इंडेक्स में.
मेरे ख्याल से आप बड़े संभले हुए हो, तो उस मामले में बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं. एंड वो अगर करोगे भी, वो तो एक एक्सपेरिमेंट की तरह से छोटे कैपिटल के साथ करोगे. इफ़ यू डू, शायद कब ना ही करो.
नहीं, मेरे को ऐसा, मैं वही तो बोला आपको, मैं एक ट्रेडर हूँ. मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, नीचे भी जा सकता हूँ. तो मैं इंस्ट्रूमेंट क्यों चेंज करूँ? सीधी सीधी बात है, जाएगा तो बाजार दो ही तरफ जाएगा, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. तो मैं क्यों ना अपने एनालिसिस के हिसाब से इसको करूँ. इसलिए मैं ज़्यादा इंडेक्स या कोई चीज़ चेंज नहीं करता ज़्यादा.
आपको लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाने हैं, या विच इज़ नॉट ए बैड थिंग, वो गलत चीज़ नहीं होती है, या एक कंफर्टेबल कंसिस्टेंट लाइफ जीनी है?
मेरे को एज ए, मैं
या बहुत सारे पैसे कमा के, एक तीसरा ऑप्शन भी है.
नहीं,
कंसिस्टेंट लाइफ.
एक्चुअली एक बड़ा कैपिटल के साथ एक, मतलब कोई काम ना करना पड़े, जिसको बोलते फाइनेंशियल फ्रीडम.
राइट.
इसको अचीव करना चाहता हूँ पहली बात.
व्हाट इज़ द बड़ा कैपिटल फॉर यू?
जैसे कि मान लीजिए कि मेरा जो भी मेरा खर्चा है, जैसे कि मान लेते हैं कि सपोज मान लेते हैं 1 लाख का मेरा खर्चा है, तो एटलीस्ट मैं बैठे बैठे कुछ काम ना करके भी मुझे एज ए 1.5 से 2 लाख मेरे घर, मतलब जेब में आए
महीने के.
ऐसे मान लेते कि मैं, मेरे पास जो है, मैंने ऐसे 10 करोड़ रुपए मैंने इकट्ठा कर लिया काम करने करके, उसको जो मैं एज FD कर लिया, तो उसका जो इंटरेस्ट
है 10 करोड़ का, तो 70 लाख FD आ गया आपका साल का.
साल
तो
का.
महीने का मैंने
बांट लिया, महीने के हिसाब से
महीने का 6 लाख हो गया.
6 लाख बांट लिया और कुछ 1% या 2% उस पर छोड़ दिया, ताकि वो भी खत्म ना हो, वो भी बढ़ता रहे. जो 10 करोड़ है, 1% उसमें भी कंपाउंड होता रहेगा.
करेक्ट.
तो इसमें क्या, मेरे को ऐसे काम नहीं करना पड़ेगा. मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बाहर रहता हूँ. right. इसलिए मैं ऐसे, मेरे को बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बनना है, लेकिन ऐसे मेरे को काम भी ज़्यादा नहीं करना है.
ये नंबर ऐसे ही बोला आपने 10 करोड़, या ये एक्चुअल नंबर है क्या? आप इसके बाद काम नहीं करोगे?
मैं ऐसे तो एक एग्जाम्पल
बोला है, बट ऐसा कोई नंबर सोचा नहीं है.
सोचा नहीं है बस.
फिर क्योंकि जैसे जैसे लाइफ में पैसा आता है, तो अपने खर्चे भी बढ़ते हैं, और खर्चे बढ़ते हैं तो फिर हम कहते हैं और कमा लें. यही बंदा फिसता रहता है कि खर्चे बढ़ गए और कमाओ, खर्चे बढ़ गए और कमाओ. तो वो सोच भी तो आएगी कभी. आप 10 करोड़ या 5 करोड़ या 20 करोड़ भी सोच लोगे कभी, आपका लाइफस्टाइल का खर्चा अब 1 लाख रुपए है, कभी 4 लाख 5 लाख भी तो होगा. फिर उस हिसाब से आपका जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा.
मैं ऐसे मैं कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा शौक नहीं है मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ों
का. अभी नहीं है,
अभी नहीं है.
अगर लाइक से 10 करोड़ आपके वॉलेट में होते, आपके बैंक अकाउंट में होते आज, शौक तो आते यार.
नहीं, एक्चुअली सही बताओ तो मैं कुछ ज़्यादा खास शौक अभी भी नहीं है. okay. अभी भी मेरे पास पैसे तो मैं ऐसे नॉर्मली जितना मैं उस टाइम पे चलता था, अभी भी मान लो 10-12 हज़ार में अभी भी चल ही रहा है उतना, वैसे ही. अभी भी मैं कुछ खास शौक नहीं गया. अभी मैं फ़ोन लेता हूँ तो सेकंड हैंड फ़ोन ही लेता हूँ.
है ये तो बहुत चलेगा, ये तो ज़्यादा हो गया.
एक ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया.
नहीं, क्योंकि फ़ोन में स्पेशली, क्योंकि पता नहीं ख़राब होते हैं यार अंदर क्या.
नहीं, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं ऐसे एक आईफोन ले लिया, मान लेते हैं पुराने आईफोन जो है 10-12 हज़ार में मिल जाते हैं. अब 10-12 हज़ार, हाँ, पुराने जैसे आईफोन 7 हो गया, आईफोन एक्स हो गया, सब 10-12-20 में आ जाते हैं. 11 हो गया,
एक्स आया था 1 लाख रुपए का फ़ोन.
हाँ, लेकिन आज के टाइम में 20-20 हज़ार का मिल जाते हैं. wow. पुराने वाले.
तो दैट्स अ स्मार्ट आइडिया अगेन.
तो अभी क्या, 20 हज़ार में मैं देखने जाऊँ तो उसके जैसा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन मिलेगा नहीं मेरे को, उसके जैसा कैमरा मिलेगा नहीं, और इसका जो बाइंग वैल्यू है वही रहेगा. उस फ़ोन को मैं दोबारा अगर रीसेल भी करूँ, 20 हज़ार ही मिलेंगे मेरे को.
यार मेरा तो मन कर रहा है बेचने का आईफोन 13. नहीं बट सेंसिबल अगेन सी, पता है कि अपन कहीं ना कहीं जो ज्ञान भी देते हैं कुछ टाइम पे, मैं भी जैसे कुछ ज्ञान देता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम भी फॉर्मों में फंसे हुए हैं, हमें नहीं पता लेकिन उस चीज़ का मे बी
सभी होते हैं, कहीं नेचर ही ऐसा है, चलिए देखा जाए तो
फेयर इनफ। बहुत मज़ा आया आशीष, सच में बहुत टेक्निकल बात भी की हमने बीच में, और जिस तरह से आप ऑप्शन सेलिंग के साथ जुड़े हुए हो, पहला और आई डोंट नो बट अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि आखिरी सेगमेंट है आपका जिसमें आप ऑप्शन सेलिंग में आप अड़े रहोगे, टिके रहोगे, कि सिस्टम बन गया है और उस सिस्टम से भी कभी कभी अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो?
आई होप अभी सिर्फ मैं इसमें करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड पे करता हूँ कि मैं कितना रिस्क में उतना रख के रिवॉर्ड कितना मैं स्ट्रेस कर सकता हूँ।
चलो इस पर कर ही लेते हैं बात। अब 1:1 से शुरू हुए थे, अब 1:3 पे पहुंच गए हो यार, ये आप डिसाइड करते हो या मार्केट डिसाइड करके देती है?
नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, जैसे मैंने 1:1 पे जैसे मैं रिस्क रिवॉर्ड कर रहा था तो मैं एज ए बिल्कुल जो है 1:1 पे नहीं बुक कर पा रहा था, स्लिपेजेस आ रहे थे।
ओके
तो मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ाया, 1:5 किया उसको।
हाँ
मतलब 1:5 में बोला, 1:1.5
फिट
गलत बोल दिया सॉरी, 1:1.5 किया। तो जैसे किस दिन करता हूँ मैं, जैसे जिस दिन मान लेते हैं मंडे को मेरा स्टॉप लॉस लग गया, अब मेरे पास पूरा हफ्ता फ्री है अगले गुरुवार तक,
तो नहीं लोगे ट्रेड है?
नहीं नहीं
लोगे, ऐसा लग गया तो बस
बस
इस हफ्ते चुप
चुप, पिक्चर देखता हूँ, कुछ भी करता हूँ लेकिन ट्रेड नहीं लेता हूँ, एक्सपायरी खत्म होगा फिर दूसरा।
अगर मार्केट इतनी अपॉर्चुनिटी दे कोई आपको तो भी नहीं?
कुछ नहीं,
प्योर सिस्टमेटिक यहाँ से भी बन चुके हो मतलब?
बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्या, बीच में मेरे पास एक गैप है प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं उस टाइम पे क्या करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा के या घटा के देखता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे कर लेता हूँ सिमुलेटर पे बैठ के। तो ये लगभग 2 या 3 दिन में हो जाता है, 2 से 3 साल का, अगर 2-3 घंटा भी बैठ जाए ना स्पीड में अगर बंदा करे, क्या हाथ भी सेट हो गया है उस पर, सिमुलेटर पर भी हाथ सेट हो गया, तो 2-3 घंटा अगर डेली करता हूँ तो 2-3 में एक हफ्ते में एक ट्रेड मान लेते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है 2-3 साल का डेटा निकालने में। तो ऐसे करते करते वो जो मैंने जितने बार मेरे स्टॉप लॉस लगा वो करते करते मैं 1:3 पे पहुंच गया।
अच्छा ये पहुंचे हो, आए नहीं हो?
नहीं ना ना आए नहीं,
सोचा नहीं है
जी, बिल्कुल नहीं।
लाया गया है
लाया गया है। तो फिर जैसे ही मैंने 1:3 से ऊपर गया तब उसका जो रिजल्ट खराब आने लगा।
अच्छा
कि पोजीशन साइजिंग बढ़ गया, कि मैं पास आने लग गया इन द मनी के, तो मैं समझ गया कि 1:3 तक ही स्ट्रेचेबल है।
ऑप्शन सेलिंग में तो इतना अभी बहुत है यार, ऑप्शन बाइंग में तो लोग 1:10 बोलते हैं,
बहुत कर सकते हैं,
तो बहुत कुछ हो सकता है, बट वो पे वो भी रिस्क मैनेजमेंट करने के बावजूद भी आपका फाइनल जो प्रोबेबिलिटी वाला गेम प्ले आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे इवेंचुअली
आप अगर उसमें राइट भी हो गए तब भी बहुत कम चांस है।
करेक्ट,
इसमें अगर आप गलत भी हो गए तब भी आपके पास चांस है एज अ टाइम डीके थीटा के वजह से। ये फायदा है, कुछ फायदे मतलब टेक्निकल फायदे है जिसकी वजह से एज ऑप्शन सेलिंग सही लगता।
तो आपका पहले साल का प्रॉफिट कितना था?
पहले साल का लगभग था 2 लाख के आसपास।
अच्छा,
और 8 लाख पे, दूसरे साल भी 2 लाख ही था।
तो अच्छा
हाँ सेम ही था दोनों साल में।
ओके ओके,
मतलब तो लगभग मैंने आज 8 लाख से का शुरू किया तो 2 साल में मैंने 50% रिटर्न बना लिया, 4 लाख 4 लाख।
और अभी आप 19 लाख तक पहुंच गए,
अभी
19 लाख। लोएस्ट सॉरी हाईएस्ट लॉस तो आपने 16,000 देखा है, हाईएस्ट प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं होगा एक दिन में?
हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने इसी मंथ देखा 60,000 के आसपास।
अच्छा कितने ट्रेड वैल्यू?
ये 19 लाख का।
अच्छा पूरे कैपिटल?
पूरे कैपिटल, ऑप्शन सेल में आपको पूरा कैपिटल मार्जिन चाहिए आपको।
तो अच्छा 20 लाख पे 60,000, तो 3%
का
विद इन अ डे?
नहीं नहीं पूरा हफ्ते।
अच्छा पूरे हफ्ते, अच्छा वीक, वही वही हाँ, तो आपका ट्रेड है वो एक और लेस। फिर यार जगा दिया पूरा। ऑप्शन सेलिंग में सी हम पॉडकास्ट करते हैं ऑप्शन सेलिंग के भी काफ़ी किए, इसका एक अलग तरीका होता है क्योंकि पोजिशन ऑप्शन बाइंग में भी, बट इसमें ना बहुत सारे एंगल्स होते हैं
ऑप्शन। एक्चुअली क्या है सर, ये आर्ट है, साइंस एंड आर्ट का मिक्सचर है, इसको आप कैसे भी पेंट कर सकते हो, ये एक फायदा है इसको, इसलिए इसका नाम ऑप्शन है, लॉर्ड ऑफ ऑप्शन।
हर एक के पास ऑप्शन है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है।
करने का
मज़ा आया आशीष, एंड आई होप के ये जर्नी बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे।
उम्मीद तो है सर, अगर मार्केट निकालना दे
एंड आप जल्दी ही फाइनेंशियली फ्रीडम आपको जल्दी मिले, एंड यू गेट टू डू व्हाट यू रियली वांट टू डू। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया इतना।